प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
ओम शांति। भारत भर में आज का दिन कौन सा दिन है? मदर्स डे। एक है मां बनना, एक है मातृत्व, दोनों में अंतर है। मातृत्व के लिए केवल मां बन जाना पर्याप्त नहीं है। यदि बच्चे को जन्म देने से ही केवल मातृत्व आ जाए तो संसार में जो नारी है उसकी वह गरिमा, उसमें वह तेज, उसमें वह ओज होता, परंतु वैसा नहीं है। मातृत्व अर्थात सभी को अपना क्या समझना, बेटा समझना, उसका संबंध विवाह से, उसका संबंध अपने शरीर से, किसी को जन्म देने से नहीं है। मातृत्व बहुत ऊंची अवस्था है, यहां तक कि शास्त्रों में उपनिषदों में लिखा है, उपनिषद के ऋषि स्त्रियों को आशीर्वाद देते थे, सब पुत्रों की मां भव, और वो होने के बाद तुम्हारा जो पति है वही तुम्हारा पुत्र बन जाए। तो भारत माता की जय, भारत में रहने वाली माताओं की जय। तो मातृत्व बहुत ही ऊंची अवस्था है, एक छोटी कन्या भी मां हो सकती है। यदि यह संकल्प लिया जाए कि मैं जगत माता हूं, क्योंकि मां बन जाना वो तो मादा भी बनती है, पशुओं में जो मादा होती है वह भी मां बनती है, परंतु संपूर्ण सृष्टि में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो मातृत्व को उपलब्ध होता है, बाकी केवल मां बन सकते हैं। मां का तो संबंध केवल देह से है, मातृत्व की परिभाषा आध्यात्मिक है। मातृत्व वह अवस्था है जिसमें आत्मा यह अनुभव करती है कि विश्व की सभी आत्माएं मेरी संतान है, विश्व की सभी आत्माओं की मुझे पालना करनी है। तो केवल उस अर्थों में नहीं कि जिस अर्थों में संसार इस दिवस को मनाता है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ में हम सभी कौन है? माताएं हैं, जगत माता है, जगत जननी है, जगन माता है। इसके लिए हमारे कर्तव्य बहुत ऊंचे हैं, विश्व का पालन करने की जिम्मेवारी हमारी है, विश्व की आत्माओं का संगोपन, विश्व की आत्माओं का पोषण हमें करना है। सभी माताएं, सभी ब्रह्मा कुमारियां, सभी कुमारियां, यहां तक कि कुमार, अधर कुमार, सभी अपने आप को उस उच्च और श्रेष्ठ समान में स्थित कर सकते हैं कि मैं कौन हूं? जगत माता हूं। तो आज की जो मुरली है, उस मुरली में बाबा ने किस विषय पर प्रकाश डाला है? सत्यता की शक्ति के ऊपर, सत्यता के ऊपर कई सारी मुरलियां चली है। कहीं पर सत्यता को बाबा ने प्यूरिटी से जोड़ा है, तो कहीं पर सत्यता को यूनिटी से, तो कहीं पर सत्यता को ऑनेस्टी से, तो कहीं पर सत्यता को क्लीनलीनेस से, कहीं पर निर्भयता से भी जोड़ा है कुछ कुछ मुरलियों में, 69 से लेके तो 80 तक बहुत सारी मुरलियां है सत्यता की शक्ति के ऊपर। तो आज बाबा सत्यता की शक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं। ये सत्यता की शक्ति क्या है, किससे प्राप्त हुई है, जिससे प्राप्त हुई है उसका स्वरूप क्या है, इस सत्यता की शक्ति से क्या क्या हो जाता है। मुख्यतः मुरली इस बात पर केंद्रित है कि सत्यता की शक्ति से क्या क्या होता है। सुदूर जापान की एक कहानी है। एक गांव में एक युवा सन्यासी आया। उस युवा सन्यासी के मुखारविंद में, चेहरे पर एक ऐसा तेज था, अलौकिक तेज, देखते ही देखते सारा ही गांव उससे प्रभावित हो गया। सभी आकर उसकी पूजा करने लगे, उसकी प्रतिभा का प्रकाश दूर दूर तक फैलने लगा, उसकी सुगंध यहां वहां बिखरने लगी। जो भी आते उसके सामने नतमस्तक होते, उसके चरणों की रज अपने माथे पर लगाते, और वो वास्तव में था भी उतना ही अलौकिक, दिव्य, तेजस्वी, तपस्वी। अचानक एक दिन सुबह सुबह सारा के सारा गांव उसकी कुटिया के सामने हो गया। लगभग 2 साल हो गए थे गांव में। कुटिया के सामने सारा गांव क्रोधित, चिल्लाते हुए, किसी ने जाकर सबसे पहले उसकी कुटिया में आग लगा दी। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, उस शोरगुल और उस आवाज में किसी ने उसे कहने का मौका तक नहीं दिया। वो आश्चर्य से पूछने लगा कि क्या हुआ, बात क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। जब वो ये पूछ ही रहा था कि भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने आकर एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में पटक दिया और उस सन्यासी से कहने लगा, क्या इस बच्चे को पहचानते हो। सन्यासी ने कहा, मैं ठीक से आप लोगों को ही नहीं पहचानता, इस बच्चे को कैसा पहचानूं। वो गांव वाले कहते हैं, ये बच्चा तुम्हारा है। कहते कहते ही उसे कुछ लोग पत्थर मारने लगते हैं, कुछ लोग गालियां देने लगते हैं। वो कहता है, क्या वास्तव में ये बच्चा मेरा है। सारी भीड़ उसके विरोध में खड़ी है, अकेला सन्यासी, तपस्वी, तेजस्वी, वही सन्यासी जिसके चरणों में ये लोग अब तक गिरते थे, वही सन्यासी जिसकी बस पूजा ही पूजा होती थी। वो बच्चा जोर से रोने लगा। सन्यासी कहता है कि अगर आप कहते हो कि ये बच्चा मेरा है तो ये बच्चा मेरा है। भीड़ सारी चले जाती है। सुबह का मौसम, दोपहर को सन्यासी बच्चे को गोद में लिए भीख मांगने निकलता है उसी गांव में। कौन भीख देगा उसे। कैसा ये दृश्य है कि सन्यासी बच्चे को लेकर निकल रहा है, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। जिस द्वार पर जाता है क्या होता होगा, द्वार बंद। जिस गली से गुजरता है वहां पर पत्थर, छिलके, लोग उसको मार रहे हैं। कहीं पर भी उसे भीख नहीं मिलती और बच्चा जोर जोर से रोता है क्योंकि बच्चा भूखा है। जा जाकर हर द्वार पर सन्यासी कहता है कि कम से कम कुसूर तो मेरा है, परंतु इस बच्चे को कम से कम दूध तो दे दो। इस बच्चे ने क्या दोष, इस बच्चे का क्या दोष, इस घर से उस घर, एक द्वार से दूसरी द्वार। सन्यासी उसी घर पर आकर खड़ा हो जाता है जब उसकी बच्चे की मां का घर था। बच्चे की मां घर के अंदर, सन्यासी कहता है कि बच्चा भूखा है, इसे कोई दूध पिला दे। उसकी मां उस बच्चे को देखती है और रोने लगती है, जाकर अपने पिता के चरणों में गिरती है कि मैंने आपसे झूठ कहा था, बच्चे के असली पिता को छिपाने के लिए इस सन्यासी का नाम ले लिया था, वास्तव में इस सन्यासी से मेरा कोई संबंध नहीं। उस लड़की का बाप आकर सन्यासी के चरणों में गिरता है, कहता है क्षमा कर दो। देखते ही देखते सारा गांव और सारी भीड़ वहां पर आ जाती है। सन्यासी को कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सन्यासी ने जो पहले कहा था, जब उसे कहा था ये बच्चा तुम्हारा है, तब वो कहता है इज इट सो, क्या ये ऐसी बात है। अभी भी वो फिर से वही कहता है इज इट सो, क्या ये ऐसी बात है, और वो बच्चा ले लेते हैं। गांव वाले कहते हैं अरे पागल, तुमने सुबह ही क्यों नहीं बताया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहता है वो तो तब भी प्रेमपूर्ण नहीं था, उसकी आंखों में तब भी प्रेम ही था जब उस पर इस तरह से दोष लगाया गया था, परंतु अंधे के आगे सूरज, वैसी ही वहां स्थिति थी। सन्यासी कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चा चाहे मेरा हो या मेरा न हो, सुबह तो आपने एक झोपड़ी को आग लगा ही दी थी और किसी एक व्यक्ति पर पत्थर तो मारे ही थे। अगर मैं बता दिया होता कि ये मेरा नहीं है तो शायद कोई और झोपड़ी जला दी होती और किसी और घर पर किसी और व्यक्ति पर पत्थर मारे होते, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वो कहते हैं अरे तुम्हारी इज्जत तो चली गई ना। वो कहता है कि तुम्हारे मान को भी कभी मैंने स्वीकार नहीं किया था, जाने का प्रश्न ही नहीं था, मैं चौथे द्वार पर खड़ा था। गांव वाले पूछते चौथा द्वार कौन सा है। अध्यात्म का यह चौथा द्वार है उपेक्षा, इनडिफरेंस। अध्यात्म में चौथा द्वार कहा जाता है उपेक्षा को, इनडिफरेंस, क्योंकि जो कह रहे थे वो संपूर्ण असत्य था। जिसे विश्वास सत्य में है और सत्य की शक्ति में है, असत्य वहां कुछ कर नहीं सकता। सत्य के सूर्य को अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, सत्य के सूर्य को क्या असत्य के बादल ढक नहीं सकते। आज की मुरली में बाबा ने चार महावाक्य उच्चारण की है सत्य के संबंधित। पहला, जो सत्य है वही सुंदर है, वही शिव है। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। पाश्चात्य जगत के जॉन कीट्स नाम का एक कवि है, उसने अपनी कविता ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महावाक्य है, इसी भाव को दर्शाता है, जो कि भारतीय सभ्यता की, भारतीय उपनिषदों में जिसका गायन है सत्यम शिवम और सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, वही शुभ है, और जो शुभ है और जो सत्य है, सौंदर्य केवल उसी में है। जो असत्य है और जो अशुभ है उसमें सौंदर्य नहीं है, जीवन का सौंदर्य ही सत्य में है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य की उपासना की, उन्होंने स्वयं को वोटरी ऑफ ट्रुथ, सत्य का पुजारी कहा, और सारा ही जीवन सत्य की खोज की। पा नहीं सके परंतु खोज जरूर की। एक है शूद्र की खोज करना, एक है परम की खोज करना। शूद्र की खोज में अगर शूद्र पा भी ली ले कोई तो भी दुख ही प्राप्त होगा, परंतु सत्य की जो खोज है वो अगर मिल जाए तो परम आनंद अगर ना भी मिले उस खोज में भी परम आनंद है, क्योंकि वो खोज सत्य की है। वो सत्य की खोज, वो सत्य की आग, वो सत्य की पिपासा, वो सत्य को पाने की इच्छा, वो सत्य की अभीप्सा जिस मन में उत्पन्न हो जाए वो परम आनंद को ही उत्पन्न होता है। केवल खोज। तो जो सत्य है वह शिव है, और जो शिव है वह परम सुंदर है। दूसरा, गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर जो है वो सत्य है। फिर से महात्मा गांधी का एक वाक्य याद आता है, उन्होंने यहां तक लिखा है कि मुझे ये पता नहीं कि भगवान सत्य है या नहीं, परंतु इतना जरूर कह सकता हूं कि सत्य ही परमात्मा है। नॉट श्योर वेदर गॉड इज ट्रुथ और नॉट, बट ट्रुथ इज गॉड। तो उस व्यक्ति ने सत्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम सभी भी सत्यान्वेषी भी हैं। हमने सत्य को पा भी लिया है तो खोज भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं। एक है सत्य की खोज, केवल सूचना एकत्र करना सत्य को उपलब्ध हो जाना नहीं है। तो सत्यान्वेषी अभी भी सभी है, सत्य की खोज और सत्य को पाना। तो दूसरा महावाक्य बाबा ने सत्य के संबंधित उच्चारण किया है, गॉड इज ट्रुथ। तीसरा सच तो विठो नच, जिस हृदय में सत्य का संगीत है वही हृदय नाच सकता है। जहां असत्य की परछाई है वहां पर वो नृत्य जीवन में नहीं हो सकता, वो नृत्य हो ही नहीं सकता, परंतु दोष सारा आंगन को दिया जाएगा। परंतु जहां सत्य है वहां पर संगीत होगा, वहां पर नृत्य होगा। दूसरे हिलाएंगे परंतु वो हिलाना क्या लगेगा, झूलना। वो हिलाना क्या लगेगा, जैसे खुशी के नशे में झूल रहे हैं। उनको और ही धन्यवाद देंगे कि तुम हिलाओ और हम झूले। तो ये जो नाव है सत्य की हिलेगी डूलेगी परंतु डूब नहीं सकती, और असत्य की नाव जो है वो हिलती डुलती नहीं है, सीधी जाती है परंतु एक दिन सीधी ही डूब जाती है। जिस नाव पर हम सवार है वो सत्य की नाव है। तो जो सत्य की नाव पर सवार है वो कभी डूब नहीं सकते। जिनके हृदय में सत्य है वो निरंतर ही नाचते रहते हैं। दूसरों का हिलाना उन्हें हिलना नहीं, हिलाना नहीं, परंतु जैसे झुलाना लगता है। खुशी के नशे में नाचते रहते हैं। संसार का तो काम ही है हिलाना। संसार में ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको कि इस दुनिया के लोगों ने कुछ कहा नहीं, हिलाया नहीं, निंदा नहीं की। यहां तक कि इस यज्ञ के आदिपिता ब्रह्मा बाबा, अज्ञानियों ने तो अपमान किया परंतु ज्ञानियों ने भी किया, किसी ने नहीं छोड़ा था। सभी ने अपमानित किया, निंदित किया, परंतु अचल अडोल स्थिति रही। सत्य की वह शक्ति थी। चार महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए। और सत्य के संबंधित कौन कौन से महावाक्य जो मुरलियों में प्राय आते रहते हैं, साच को आच नहीं, अभी भी गीत बजा था, साच को कोई आच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं, प्रभु आपके हम तो यू सारे, पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो लगते प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। और सच्चे दिल पर साहेब राजी, 67 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा अगर सच्ची दिल है, अगर बड़ी दिल है, अगर साफ दिल है तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है और ऐसे बच्चों को बाबा अंत तक दाल रोटी खिलाएगा। और महावाक्य, दिल साफ मुराद हासिल, और सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद का महावाक्य है कि सत्य की अंततोगत्वा विजय होती है, जबकि दिखाई दे रहा है विजय असत्य की हो रही है आज संसार में, प्रतीत ऐसा हो रहा है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होगी। ऊपर से दिखावा आया सत्य में, परंतु विजय सत्य की ही है। आज बाबा कौन सी सभा को देख रहे हैं? विधि विधाताओं की सभा और सिद्धि दाताओं की यह सभा है। वो संसार में विधान सभा है, वो कौन सी सभा है? वो मेंबर्स की सभा है, ये अधिकारी महान आत्माओं की सभा है। उस सभा में हलचल है, बहुत शोरगुल है, लड़ाई झगड़ा भी है। यहां पर परम आनंद और परम शांति की अनुभूति है। ऐसे सिद्धिदाता, सिद्धिदाता सिद्धि मांगने वाले नहीं परंतु सिद्धि का दान करने वाले, कितनी ऊंची अवस्था है। बाबा हमको किस नजर से देख रहे हैं? सिद्धिदाता के रूप में देख रहे हैं, जो दूसरों को सिद्धियां दे, सिद्धि मांगने वाले नहीं सिद्धियां देने वाले, जो कि रामायण में किसको बताया है ऐसा? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, हनुमान को सिद्धि दाता कहा है, सिद्धि का दान करने वाला। तो हनुमान भी पिछले संडे था ना, पूछ से लंका जला दी, सेवक और हृदय में राम, तीन विशेषताएं, वो सब कौन है? हम। तो ये सभा है विधि विधाताओं की सभा, ये सभा है सिद्धि दाताओं की सभा, ये सभा है जादूगर आत्माओं की सभा, ये सभा है मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की सभा, ये सभा है बालक सो मालिक आत्माओं की सभा, ये सभा है शांति दूत आत्माओं की सभा। तपस्या द्वारा विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैलाने वाले जो है, ऐसी सभा को बाबा देख रहे हैं। ऐसी जो आत्माएं विधि विधाता, क्या कर रही है आत्माएं? किस विधि से, किस विशेषता से, किस शक्ति से सर्व को सिद्धि का सिद्धि स्वरूप बना रही है? सत्यता की शक्ति। तो सत्यता की शक्ति क्या है? विशेषता है। सत्यता की शक्ति क्या है? शक्ति है। सत्यता की शक्ति क्या है? विशेषता, शक्ति, वर्षा, अथॉरिटी, अधिकार। कितनी सारी बातें बाबा ने कही है, और मुख्य रूप से जो तीन बातें कही है वो है, ये सत्यता की शक्ति ही महानता है, रियलिटी है, और इसी की मान्यता है। ये बातें प्राय बाबा पवित्रता की शक्ति के लिए कहते हैं। आज की मुरली में किसके लिए कह रहे हैं? सत्यता की शक्ति के लिए। सत्यता ही महानता है, सत्यता ही की ही मान्यता है, और सत्यता ही रियलिटी है। इस सत्यता की शक्ति से क्या क्या हो जाता है, ये आज के मुरली का विषय वस्तु है। बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति से आठ बातें जो है वो सतो प्रधान बन जाती है। कौन कौन सी आठ बातें? आठ बातें जो है सत्यता की शक्ति से सतो प्रधान बन जाती है। सबसे पहली प्रकृति, एक। दूसरा युग या समय, तीसरा संबंध, चौथा संस्कार, पांचवा प्रकृति हो गया, आत्माएं, व्यवहार, आहार, सर्व सामग्री। तो मुरली का सारा विस्तार इन आठ बातों का है। सत्यता की शक्ति से सबसे पहले आत्माएं सतोप्रधान होती है। उन आत्माओं में बाबा ने दो विभाग किए, एक संसार की आत्माओं का क्या होता है और हमारा क्या होता है। सबसे पहले आत्माएं सतोप्रधान होती है, दूसरा प्रकृति सतोप्रधान होती है, तीसरा सर्व सामग्री सतोप्रधान होती है, चौथा संस्कार, उसके बाद में संबंध, उसके बाद में व्यवहार, उसके बाद में आहार। आठों की आठों चीजें क्या होती है? सतो प्रधान होती है। सतो प्रधान करने वाला कौन है? कौन बना रहा है यह सतो प्रधान? सत बाप, सत टीचर और सत गुरु। सत की भी परिभाषा दी है, दो अर्थ दिए हैं सत के। कौन से दो अर्थ? एक है सत्य और दूसरा है अविनाशी। तीन चीजों का परिचय मिला है इन सत्यता की शक्ति से हमें। कौन कौन से? सबसे पहला फाउंडेशन जो है वो है आत्मा का। ये मूल फाउंडेशन है। पहले क्या समझते थे और क्या थे? महान थे या महान के पुजारी थे? महान के पुजारी थे। अभी ज्ञान मिला उसके बाद में सत्य स्वरूप में अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो दूसरों को भी इतनी अथॉरिटी से कहते हो कि हम आत्मा है, पहला। दूसरा परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ, ये पता चला कि परमपिता जो है, परमात्मा जो है वो हमारा परमपिता है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से, वर्षे के अधिकार की शक्ति से ये कहते हो कि वो हम बाप के हैं और बाप हमारा है। तीसरा सृष्टि रचना, उसका उसमें भी बाबा ने कितनी अच्छी बातें कही है। ये सृष्टि चक्र पूरा हुआ, ये फिर से रिपीट हो रहा है। और तीसरा संगम युग है, कलयुग नहीं। एक तरफ है संसार के सारे पंडित जो कि शास्त्रों की अथॉरिटी से कहते हैं कि ये कलयुग है, और तुम कहते हो ये संगम युग है। सोए हुए कुंभकर्णों को कहते हो समय आ गया है, विश्व को मैसेज देते हो कि आ जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। संसार की आत्माओं को चैलेंज करते हो। आगे कहा ना बाबा ने, कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कैसे कहे, माने न माने, कौन हो तुम? सर्वशक्तिवान मास ऑलमाइटी अथॉरिटी तुम्हारा साथी है, विश्व का रचयिता तुम्हारा साथी है। इसके लिए ये संकल्प भी नहीं आ सकता, सत बाप सत्य तुम्हारे साथ है, विजय निश्चित है। तो सत्यता की शक्ति से सबसे पहली पॉइंट है आत्माएं सतो प्रधान बन जाती है। आठ बातें हो जाती है, उसमें सबसे पहले है आत्माएं। अब पहले संसार की आत्माओं की चर्चा और उसके बाद में हम आत्माओं के साथ क्या होता है, संसार की आत्माओं का क्या होता है इस सत्यता की शक्ति से। संसार की आत्माएं यथाशक्ति अपने समय पर अपने राज्य में गति के बाद सदगति में अवतरित होगी अपने समय पर। उनको भी बाप को याद करने की विधि का संदेश पांच विधि से मिलेगा, छह विधि से। कौन कौन सी विधि है वो? संसार की आत्माओं को संदेश कैसे मिलेगा बाप को याद करने का? सबसे सूक्ष्म और सबसे पावरफुल है वाइब्रेशंस। दूसरा चित्र, सबसे पहला है वाणी, समाचार और चित्र, तीनों ही स्थूल है। उसमें सबसे स्थूल चित्र, समाचार, वाणी। सूक्ष्म में है वाइब्रेशंस और है विनाश लीला की हलचल। इससे भी आत्माओं को याद करने की विधि का संदेश मिलेगा। और छठवां है वैराग वृत्ति का वायुमंडल। तो बाबा ने छह बातें बताई है, इन छह बातों के आधार से विश्व की जो आत्माएं हैं वो गति के बाद सदगति, सदगति की तकदीर बनाने वाले तुम हो। कौन बनाएगा? हम। याद प्यार में कहा ना, विश्व की आत्माओं की सदगति दाता तुम हो, तो सदगति की तकदीर बनाने वाले, गति के बाद सदगति में लाने वाले, अपने स्थान पर अपने समय यथाशक्ति उनको अवतीर्ण करने वाले तुम हो। कैसे करोगे? वाणी से। कैसे करोगे? चित्रों से। कैसे करोगे? समाचार से। कैसे करोगे? वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल से। कैसे करोगे? पावरफुल वाइब्रेशन से। कैसे करोगे? विनाश लीला की हलचल से। इन छह बातों के आधार से विश्व की आत्माओं को संदेश मिलेगा। यहां पर योग का प्रयोग अमृत वेले, विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज करना, उनसे बातें करना, उन्हें आह्वान करना, उन्हें बताना कि धरती पर वह आ चुका है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। भगवान के आने की घोषणा अमृत वेला सकाश में करनी है और आत्माओं का आह्वान करना है, उन्हें पहले ही इमर्ज करके। तो ये तो हो गया आत्माओं का। अब हम आत्माओं के साथ क्या हो जाएगा इस सत्यता की शक्ति से? सात बातें कौन कौन सी? ये तो हो गया विश्व की आत्माओं का क्या होगा सत्यता की शक्ति से। आठ बातें बाबा ने कही होगी, उसमें सबसे पहला था आत्माएं, उसमें संसार की आत्माएं। हम आत्माओं के साथ क्या होगा? कौन बताएगा? नाम हमें पता नहीं है, नए लोग हैं, नहीं तो हम नाम लेकर पूछते। सबसे पहले सात बातें बाबा ने यहां बताई है जो सत्यता की शक्ति के कारण हम आत्माओं में होगी। नाम और रूप पहला, अभी याद आ गया। दूसरा, दूसरा बोल। तीसरा देश। चौथा वेश। पांचवा कर्तव्य और चरित्र। छठवा दिनचर्या। ये सारा क्या हो जाएगा? अविनाशी हो जाएगा, सत हो जाएगा। और अंतिम कर्तव्य चरित्र हो गया, खाना और पीना। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हम आत्माओं के साथ? नाम और रूप। नाम में क्या? देवताई स्वरूप। नाम गुणगान करेंगे, आधा कल्प कौन गुणगान करेगा? प्रजा, और आधा कल्प भक्त। और रूप में चैतन्य रूप, और आधा कल्प चित्र रूप। ये पहला। दूसरा बोल। हमारे बोल क्या बन जाएंगे? सत्वचन। क्या कहेंगे वो आत्माएं? आधा एक बोल भी सुना दो तो हम महान आत्मा बनने का अनुभव करेंगे। तीसरा देश भी अविनाशी हो जाएगा। सारे विश्व का विनाश हो सकता है परंतु भारत अविनाशी खंड है, हमेशा साकार मुरलियों में ये बातें आती है। वो भी किस आधार से? अभी हमारी जो सत्यता है उस सत्यता की आधार से। तो भारत भी क्या बन जाएगा? अविनाशी खंड बन जाएगा। फिर है वेश, आधा कल्प देवताई वेश और आधा कल्प देवता वेश का यादगार, जो कि अब तक भी ड्रेस पहनाते हैं, सजाते हैं चित्रों को। भक्त लोग चित्रों को अब तक भी ड्रेस पहनाते हैं। वो किसके आधार से? सत्यता की शक्ति के आधार से। उसके बाद है दिनचर्या। हमारी दिनचर्या भी क्या हो जाएगी? अविनाशी हो जाएगी। जैसी हमारी श्रेष्ठ दिनचर्या है यहां पर, सुबह सुबह उठने की, प्रातः स्मराम हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरियम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। शास्त्रों में लिखा है ये जो समय है कैसा समय है? सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरियम, तुरिया अवस्था को प्राप्त कराने वाला ये समय है अमृत का। अमृत का समय है ये, अमृत पान करने का ये समय है। तुरिया अवस्था कहा है, सुषुप्ति जागृत और स्वप्न के ऊपर की जो अवस्था है उसमें संसार की आत्माओं ने तुरिया शब्द कहा है। तुरिया अर्थात चौथा, द फोर्थ गणित का अंक यूज किया है, सबसे उच्च अवस्था आत्मा की जो है उसको वर्णन करने के लिए। स्वप्न नहीं है वो, जागृत नहीं है, सुषुप्ति की अवस्था नहीं है, जो फोर्थ स्टेज है, द फोर्थ स्टेज ऑफ द सोल, तुरिया परमहंस गतिम तुरियम। तो ऐसी स्थिति का अनुभव कहां होता है? ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, सुबह सुबह का समय। क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने अमृत वेले को क्या कर दिया? अविनाशी बना दिया है। अभी हम भगवान की याद में रहते हैं, तो फिर द्वापर युग से तो फिर वो अपने मां बाप को भी भगवान समझने लगे, तत्वों को, देवताओं को भी भगवान समझने लगे, तो शास्त्रों में वो सब भी बातें वहां आने लगी। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, क्या करें? मात पिता गुरु न वही माथा, प्रातः काल। तो अमृत वेला भी अविनाशी, उसके बाद चरित्र और कर्तव्य। कर्तव्य का यादगार कौन सा है? भागवत, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। तो भागवत क्या है? कर्तव्यों का यादगार। और चरित्र का यादगार क्या है? कहानियां। उसके बाद में खाना पीना। भक्त लोग चित्रों को उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, अमृत पीते हैं, पिलाते हैं और भोग लगाते हैं, खाना खाते हैं। ये सब कहां से हुआ? अभी से। तो ये थी सबसे पहले पॉइंट, आत्माओं के साथ क्या हो गया, आत्माएं सतो प्रधान हो गई और हम आत्माएं भी श्रेष्ठ हो गई। दूसरा है प्रकृति, प्रकृति भी क्या हो जाती है? सतो प्रधान। और प्रकृति भी क्या हो जाती है? सहयोग देने का उसका कर्तव्य आरंभ होता है, उसका पाठ यहां आरंभ हो रहा है। वो सहयोग कहां बाबा ने? सहयोग लगता है किसको? सहयोग का समझ में आई बात? कौन सी बात को सहयोग कहा है? हाँ, उसको सहयोग कहा है। कितनी अद्भुत बात है। उसी के आधार पर प्रकृति के फिर तत्वों को देवता रूप में पूजे जाएंगे, वो सूर्य देव, इंद्र देव, वरुण देव, धरती मां। समुद्र क्या करेगा? सारी चीजें एक जगह एकत्र करेगा, थालियां भर भर कर समुद्र ने जो निकाली वो गायन वहां से होगा। वायु क्या करेगी? उड़ाएगी। बरसात क्या करेगी? सफाई करेगी। इतनी सारी सफाई तुम थोड़े ही करोगे, तुम्हारे सबसे अधिक सहयोगी कभी मुरली में प्रश्न था, कौन है इस ड्रामा में जो तुम्हारा सबसे अधिक सहयोग देते हैं तुमको? उत्तर था नेचुरल कैलमिटीज। जब अशरीरी अवस्था तुम्हारी नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलमिटीज होगी, जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब डिस्ट्रक्शन होगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। धरती क्या करेगी? वैल्यूएबल वस्तु एक जगह इकट्ठा करेगी। अग्नि क्या करेगी? वो तो तुम जानते ही हो। क्या कहा बाबा ने? अग्नि क्या करेगी वो तो तुम जानते ही हो। चारों तरफ आग ही आग, प्रकृति का महाप्रलयंकारी रूप होगा वो। प्रकृति तांडव नृत्य करेगी। होलसेल मौत होगा, मौत का बाजार गर्म होगा। साकार महावाक्य है सारे के सारे। इस स्थिति में स्वयं को अचल डोल रखना। इस स्थिति में बाबा ने कहा प्रकृति और प्रकृतिपति दो टाइटल दिए। आजवान, आजवान शब्द है मतलब वेलकम, आजवान, आफरीन और ऑफर, तीन शब्द कहे। तो अभी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि प्रकृति की बात चल रही है तो समान में स्थित होना है। मैं प्रकृतिपति हूं, मास्टर प्रकृतिपति हूं और प्रकृति के पांचों ही तत्वों को सकाश देनी है। प्रकृति ने अब जो हमें सहयोग दिया है उसी के यादगार में फिर प्रकृति के तत्व को मनुष्य द्वापर युग से देवताओं के रूप में, मनुष्य के रूप में पूजा करेंगे। तो ये बात थी प्रकृति की। उसके बाद सर्व सामग्री, उसके बाद में समय या युग। ये समय भी परिवर्तन होके क्या बन जाएगा? सतयुग बन जाएगा। तो उस परिवर्तन का भी आधार सत्यता की शक्ति है। उसके बाद में व्यवहार, अभी जो आत्माओं का व्यवहार है वो कैसा है? तमोप्रधान विकारी दुष्ट प्रवृत्ति यहाँ पर चारों ओर है, वो सारी परिवर्तन होकर श्रेष्ठतर प्रवृत्ति हो जाएगी, उनका वो व्यवहार बदल जाएगा। तो व्यवहार, उसके बाद में संस्कार, अभी विकारी संस्कार है, विकारी संस्कार रूपांतरित होकर सतोप्रधान संस्कार होंगे, उसके बाद में संबंध। आज संसार में जो भी संबंध है सभी विकार से उत्पन्न संबंध है, सभी संबंधों में ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, कड़वाहट है, स्वार्थ भरा है, ऐसे सारे ही संबंध परिवर्तन होंगे, श्रेष्ठ संबंध बनेंगे। उसके बाद में है संस्कार, संस्कार हो गया, संबंध हो गया, व्यवहार, आहार, भोजन। भोजन केवल वह नहीं जो हम खा रहे हैं, परंतु जो आंखों से जा रहा है, जो कानों से जा रहा है, इस वायुमंडल में ही, संसार के वातावरण में ही विकारों की बदबू है, जहां देखो वहां काम का प्रकोप है, ऐसा ये सारा ही वातावरण शुद्ध होगा और जो भोजन हम खाएंगे वो संपूर्ण रीति से शुद्ध हो जाएगा। तो सत्यता की शक्ति से ये आठ बातें बाबा ने कही है होगी। आगे क्या कहा बाबा ने, तुम कहां कैसे आते हो और मैं कैसे आता हूं, तुम आते हो ट्रेन में, मैं भी ट्रेन में आता हूं, मेरी ट्रेन कैसी है, परकाया की ट्रेन में बैठकर वो आता है। बाबा ने पूछा है जो आए हैं उनसे, तकलीफ तो नहीं है कोई, बाबा ने पूछा है, अब तो बैठने के लिए आराम से बैठे हो, बाद में आराम देना पड़ेगा, पोतरे धोतरे भक्त सब आएंगे एक दिन यहां पर। बाबा ने कहा ना, एक दिन यह भूमि जो है वो शीश महल बन जाएगा, जादू की नगरी बन जाएगी मधुबन, कोई यहां आ नहीं सकेगा, इसके लिए ऐसा समय आने वाला है। आज की मुरली में आगे चलकर बाबा ने एक जगह कहा, आत्माएं झुकेगी, प्रकृति ऑफर करेगी और आत्माएं भी सिर झुकाएगी तुम्हारे चरणों में। तो अभी फिर भी तुम्हारे पास तीन पैर है, साकार मुरलियों में आता है तुम्हारे पास तीन पैर भी नहीं मिलते, इसमें कहा है तुम्हें तीन पैर मिले, भक्त तो बेचारे एक पैर पर तपस्या करते हैं। तो यहां पर बाबा ने जो नए आए हैं उनके लिए भी कहा है, उनके भी उत्साह के लिए, उनको हिम्मत के लिए बाप दादा खुश होते हैं। यहां थोड़ी इस प्रकार की बातें की, और जिन्होंने सहयोग दिया, योग आपका और सहयोग बाप का, दोनों में जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हो। पार्टियों से मुलाकात, फर्स्ट पार्टी, शक्तिशाली आत्मा कौन है, जिसके संकल्प शक्तिशाली है, जिनके संकल्प शक्तिशाली है वो आत्माएं शक्तिशाली है। संकल्प में बाप की याद, बोल में भी बाप, कर्म में भी चरित्र। कभी बाबा ने एक जगह वहीं पर बोला है, स्मृति संकल्प बोल और कर्म में तीनों में ही बाप की स्मृति हो, ऐसी जो आत्माएं हैं वह शक्तिशाली आत्माएं। फिर बाबा ने जादू की बात की है, बाबा शब्द ही क्या है, जादू है, जैसे वहां जादू लगाते हैं तो स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, यहां बोल परिवर्तन हो जाते हैं, कर्म परिवर्तन हो जाता है, गुण परिवर्तन हो जाते हैं। तो बाबा कहा और दूसरों को बाप का बनाया, ये है जादू, ऐसे हम सब हैं जादूगर। कितनी अच्छी बात है ये केवल शब्द की बात नहीं है, जिस भाव से वो शब्द बोला जा रहा है, वो मन की श्रेष्ठतम स्थिति, वो देहभान के ऊपर की अवस्था में इस शब्द का उच्चारण हो रहा है, ये सौदा मुख का नहीं दिल का है। कभी बाबा ने, मेरा बाबा पर मुरली चला रहे थे उस समय ये शब्द कहे, ये सौदा जो है वो केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, मेरा बाबा मेरा बाबा, किससे होगा फिर, दिल से, हृदय की आर्त पुकार, ऐसी जो आवाज है उस तक पहुंचती है। पार्टी नंबर टू, क्या कहा उसमें बाबा ने, सब लोग कहां आए हो, ये भूमि कौन सी है, वरदान भूमि, वरदानी समय, वरदाता बाप, वरदान और सब वरदान लेने वाले। कौन सा वरदान? जो भक्ति में भी कहा हुआ है, लकीर, भाग्य की लकीर जितनी खींचनी चाहे खींच सकते हो। तो इस वरदान भूमि में आकर यदि कोई वरदान लेकर न जाए तो ये दुर्भाग्य होगा। सब आए हो तो वरदान लेकर ही जाना, जितनी भाग्य, जितना भाग्य बनाना है, जितनी लकीर को लंबा करना है करके जाना। बाबा ने कहा बाप समान संपन्न, संपन्न अर्थात शक्तिशाली, क्योंकि बाप स्वयं शक्तिशाली है, विशेषता ही है सर्वशक्तिया। एक भी शक्ति यदि कम हुई तो क्या कहेंगे? शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। और सर्वशक्तिवान अर्थात स्वराज्य अधिकारी, एक भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, कंट्रोल में हो। स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान संपन्न, इस नशे में रहो तो स्वतः ही शक्तिशाली बन जाएंगे। कर्मेंद्रिय धोखा न दे, अभ्यास करना है स्वराज्य अधिकार का। हमारी सारी ही कर्मेंद्रिया चंचल है, जैसे ही देहभान से हम ऊपर उठते हैं और आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो कर्मेंद्रियों के रस जो है वो क्षीण होने लगते हैं। जब तक अशरीरीपन अभ्यास का, अशरीरीपन का अभ्यास नहीं है तब तक यह देह और वो कर्मेंद्रियों के रस उसको खींचते रहते हैं। एक ही शक्ति है कहा जाता है, अगर वो नीचे बहे तो उसे काम की शक्ति कहलाई जाती है, अधोगति। वही शक्ति अगर रूपांतरित होकर ऊपर जाए, सहस्त्रार जो कहते हैं, तो वो अध्यात्म की शक्ति बनती है। अगर इस शक्ति को ऊपर नहीं लेके गए तो काम के रूप में नीचे बहती है। काम के रूप में जब वो नीचे बहती है, परतंत्रता है वहां पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर अवलंबन है उस आनंद का, और वो आनंद भी कितना क्षणिक है, अभी अभी है और अभी भी गया। क्षणिक आनंद अपने साथ बहुत बड़ा दुख लेके आता है, फ्रस्ट्रेशन लेके आता है। वही काम की शक्ति जब रूपांतरित हो जाए, वही काम की शक्ति जब परिवर्तन हो जाए तो वही ओज और तेज बनती है, वही पवित्रता की शक्ति में रूपांतरित होती है, और वही शक्ति फिर व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति की वाणी से झलकती है। वही पवित्रता का तेज, वही पवित्रता की पावर और शक्ति। और जब ऐसी अवस्था आती है तो कर्मेंद्रियों के सारे रस गिर जाते हैं, देह की वासनाएं तिरोहित हो जाती है, काम और काम की इच्छाएं से व्यक्ति संपूर्ण रीति से मुक्त होता है। ऐसी चित्त की दशा संपूर्ण प्यूरिटी की अवस्था है। स्वराज्य अधिकार, एक भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, एक भी शक्ति कम ना हो, यह है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति। फिर यहां बाबा ने और भी थोड़ी बातें कही है। एक मुख्य बात जो कही है, फर्स्ट टाइम जो आए उनसे बात करते हुए, कि निर्विघ्न बनना है लगन से, और वही विजयी रत्न है। मुरली में अगर देखा जाए तो सारी ही मुरली में केवल एक बात जो चर्चा की है वो सत्यता की शक्ति से क्या होता है, परंतु चर्चा का विषय है सत्यता की शक्ति क्या है, सत्यता की शक्ति को कैसे धारण करें। फायदे तो बाबा ने यहां गिना दिए, परंतु उसको धारण अब कैसे करें, हमारे जीवन में सत्यता क्या कैसे आए। केवल हमने आत्मा परमात्मा और सृष्टि को जान लिया, क्या ये संपूर्ण सत्य है? क्या हमने सत्यता को पा लिया है? ऐसा समझ लेना योग्य नहीं है, हमें संपूर्ण सत्य को अभी भी जानना बाकी है। सत्यान्वेषी है हम, सत्य के खोजी है। सत्य को संपूर्ण रूप से जानना अर्थात उसका स्वरूप बन जाना, जानना मानना और स्वरूप बन जाना, उस सत्य में प्रतिष्ठित हो जाना, उस सत्य में स्थित हो जाना, वह संपूर्ण अवस्था है। जब तक वो अवस्था ना आए तब तक स्वयं को संपूर्ण ज्ञानी कहलाना भी एक रीति से अहंकार ही होगा। इसके लिए सत्यता के बारे में बाबा ने और कहां कहां क्या क्या कहा है उसके ऊपर चिंतन करना। जो लिख सकते हैं कि हम अपने जीवन में सत्यता को कैसे लाए वो लिखे। और एक चिंतन का विषय है, मेरे जीवन में झूठ कहां कहां है, कौन कौन सी वो बातें हैं जो झूठ है और जिसको मैंने पकड़ के रखा है, ये जानते हुए कि भी ये झूठ है फिर भी पकड़ के रखा है, ऐसी वो कौन सी बातें हैं। उन सभी का परित्याग और सत्य को जीवन में संपूर्ण रीति से धारण करना, ये आज की मुरली का सार है। वरदान में बाबा ने क्या कहा, तुम सभी कौन हो, ब्राह्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले हो, लकीर से बाहर अगर संकल्प में भी गए तो बाप के सहारे का अनुभव नहीं होगा, सिरताज नहीं मोहताज होंगे प्रकृति के और माया के, चिल्लाने वाले होंगे, बच्चे नहीं भक्त होंगे, पुकारने वाले होंगे। इस लाइन से उस लाइन में चले जाएंगे हम, पुकारने वालों की लाइन में, भक्ति करने वालों की लाइन में। इसके लिए स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं में बांधना है। ये बंधन ऐसा है कि वो सारे बंधनों को छुड़ा देगा। केवल ये चिल्लाते रहना कि वो बंधन कब छूटेंगे, वो बंधन कब छूटेंगे, वो बंधन कब छूटेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में लिखा है हरेक वो नहीं केवल चिल्लाते रहता है कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, परंतु वह जो मेरे पिता की श्रीमत, ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, वही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा, वही आ सकेगा स्वर्ग के राज्य में। बाकी नहीं, केवल चिल्लाने वाले, रोने वाले, पुकारने वाले, मदद की गुहार मांगने वाले, वो सब नहीं। ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, जो वो चाहता है, जो उसकी मत है, जो उसकी इच्छाएं है, जो उन्हें पूर्ण करेगा, वही उसके दिल पर चढ़ेगा। तो स्वयं को इन ईश्वरीय मर्यादाओं से बांधना है। उसके पहले उन्हें जानना पड़ेगा कि ईश्वरीय मर्यादाएं क्या क्या है। क्या हमने सारी ईश्वरीय मर्यादाएं जान ली है? अगर नहीं जानी है तो जानो। बाबा ने हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक चीज के लिए मर्यादाएं दी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न जो आया है जीवन की परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि तुमने लेट एडमिशन लिए है और पढ़ी नहीं है किताबें। उसने सब कुछ कह रखा है, हर एक परिस्थिति के लिए एक एक सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म श्रीमत दे रखी है। केवल हमें उन्हें जानना है, समझना है, जीवन में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत दिल से हम सबका धन्यवाद। आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक एक मुरली का रहस्य क्लियर किया, सभी को क्लियर हुआ होगा। आपने तो टू कॉपी बन करके कर दिया, तो कितना ना आपका दिल से थैंक्स करें, शुक्रिया आपको।